जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी विजय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare.
Sabhi log prem se gaiye.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय हानिताय गौरांगो निताय 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 गौरांगो गौर हरि निताय गौरांगो गौर हरि जय सचिनंदन 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 गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि सचि माता प्राण धन गौर हरि लक्ष्मी प्रिया प्राण धन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री राधा के प्यारे भगवान की श्री नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतो मुखम नरसिंहा भद्रम विष्णुम मृत्युर्मृत्यु नमामि अहम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दाईने प्रह्लाद दाईने प्रह्लाद हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलटङ्कार्णकालये शिलटङ्कार्णकालये इतो नसिंहा परतो नसिंहा इतो नसिंहा परतो नसिंहा यतो यतो यामित तो नसिंहा यतो 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 यामित तो नरसिंहा यतो यतो या बाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा बाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंह मधीम शरणं प्रपचे नर नरसिंह मधीम शरणं प्रपचे नर कव कर कमलवरे नखम अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपो तनुभिंगा केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कव कर कमलवरे अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभिंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवद्रीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय 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 प्रभुपाद 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 जय सर्व विघ्नहर्ता विनाशक नरसिंह भगवान की भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की श्रील प्रभुपाद की पिताई गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद छे अध्याय दस श्लोक क्रमांक एक। श्री बादरायणी रुवाच इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावन पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरि। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवमाश्च श्रीरूपमं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिताश्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने नमः परस्मे पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्ता न निरोधलीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना असंभवाया खिल सत्वमूर्तये किरात हूणा भ्रफुलिंद पुल्कसा आभीर कंका यवनाखसादय यन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मे प्रभु विष्णवे नमः प्रचोदिताजे न पुरा सरस्वती वितन्वताज से सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणाप्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषिणा ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी ययिमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो दशषोडशात्मक सुलङ्कश्रेष्ठ भगवान वचांसि में।
तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति गुरुवार इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर मौका भागवत श्रवण करने का प्राप्त होता है, हुआ है। इस संसार में वही जीव को भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है जिस व्यक्ति ने करोड़ों करोड़ों जन्मों से बहुत बहुत पुण्य अर्जित किए हैं। वे पुण्य अर्जित करके जब व्यक्ति भाग्यशाली बनता है तब उस भाग्यशाली व्यक्ति को भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कोटि जन्म भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब जाकर यह भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है। थोड़ा बढ़ाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। करोड़ों करोड़ों जन्मों की पुनाई जब एकत्रित होती है तब यह भागवत कथा सुनने मिलती है। वास्तव में भागवत कथा सुनने वाले बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति ही यह कार्य कर सकता है। नहीं तो इस बिल्डिंग में कई सारे लोग रह रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, बोरीवली से आते हैं, वेश से आते हैं, यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, परंतु बिल्डिंग वाले नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भाग्य नहीं है। और यदि किसी का भाग्य है तो उनका भाग्य कहीं से भी खींचकर इस भागवत कथा में लाकर बिठा देता है। और इस भागवत कथा में आकर क्या मिलता है? गोस्वामी जी कहते हैं, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। इस संसार में जितने भी दुख है, सभी दुख को हटकर सुख प्राप्त होता है भगवान के गुण को सुनकर। दुखों से मुक्ति मिलती है, और जिसकी धन की कामना है उसे धन मिलता है, जिसको धर्म करने की कामना है उसे धर्म मिलता है, और जिसे धाम में जाना है उसे धाम मिलता है। धन, धर्म और धाम, ये तीनों चीज देने वाला ये भागवत है, भगवान की कथा है। तो ऐसा सुदुर्लभ भागवत हमें बहुत ही सुलभ प्राप्त हुआ है। इसके पीछे एकमात्र ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, जिनकी विशेष अनुकंपा से इस घोर कलयुग में भी हम यह शुद्ध विशुद्ध भागवत का श्रवण कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा को हमें बहुत ही उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ ग्रहण करना चाहिए। हम यहां पर भागवत के छठे स्कंध के दसवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। छठे स्कंध में के प्रारंभ में ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, व्यासदेव जी लिखते हैं, श्री बादरायणी उवाच। तो व्यासदेव जी श्री सुख उवाच भी लिख सकते थे, बादरायणी उवाच क्यों कहा गया है? बादरायणी का अर्थ क्या होता है? बदर का अर्थ होता है बद्रीनाथ धाम, जिसे आप लोगों ने सुना होगा। उत्तरकाशी में चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो बदर का एक अर्थ होता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जो रहने वाले हैं, बद्रीनाथ में कौन रहते थे आप जानते हो? व्यासदेव जी रहते थे। बद्रीनाथ में सम्यप्राश नाम के आश्रम में व्यासदेव जी रहते थे, इसलिए व्यासदेव को बादर कहा जाता था। और व्यासदेव जी जिस कुटिया में रहते थे वह कुटिया बेर के पेड़ के नीचे थी, इसलिए भी बादर कहा जाता है। और बादर आयन, आयन का अर्थ होता है जंगल, वन। वे बद्रीनाथ के वन में रहते थे, इसलिए भी बादर आयन कहते हैं। तो व्यास देव जी को बादरायण कहते हैं, और उस व्यास देव जी के पुत्र को बादरायणी कहते हैं। तो व्यास देव जी के पुत्र कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी उवाच बोले। किसे बोले? महाराज परीक्षित को। गंगा नदी के तट पर सुखताल में यह कथा लगी हुई है। सुनाने वाले बादरायणी सुखदेव गोस्वामी हैं, और सुनने वाले इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित हैं। इस कथा में और भी कई सारे लोग थे। महाराज परीक्षित भी थे, सुद गोस्वामी भी थे, इस संसार के भूमंडल के छोटे बड़े सब ऋषिगण थे, परंतु मुख्य श्रोता महाराज परीक्षित थे। तो यह कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, इंद्रमेव समाधिश्य भगवान विश्व भावन। ये जो ट्रेबल है बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ठीक। पश्यताम अनिमेषाणाम तत्रेवान अर्थ अंतर दे दधे हरि। वे कहते हैं कि विश्व भावन भगवान विश्व भावन देवताओं के देखते देखते समाहित हो गए। तो देवताओं को क्या कहकर किस प्रकार से समाहित हुए यह यदि जानना है तो हमें कथा के इतिहास में आना होगा। पिछले गुरुवार को हमने श्रवण किया कि किस प्रकार इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपराध किया। अपराध करने के कारण बृहस्पति इंद्र के गुरु ने श्राप दिया और श्राप के कारण असुरगण देवताओं के ऊपर चढ़ाई किए और बहुत बड़ा युद्ध हुआ। देवतागण उस युद्ध में हार गए और असुरगण विजय हुए और देवताओं के हाथ से स्वर्ग छीन लिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को बहुत ढूंढा परंतु नहीं मिले तो वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि बृहस्पति अब आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए टेम्पररी त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाओ, क्योंकि बिना गुरु बनाए स्वर्ग वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो इंद्र त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए। और विश्वरूप के पास जाकर प्रार्थना किए कि कृपया करके आप हमारे गुरु बनिए। तो विश्वरूप इंद्र के गुरु बने और इंद्र के गुरु बनकर इंद्र को नारायण कवच दिए। वास्तव में यह नारायण कवच अथर्वा ऋषि के पास था। अथर्वा ऋषि ने यह नारायण कवच दधीचि ऋषि को दिया था। दधीचि ऋषि ने यह नारायण कवच त्वष्टा को दिया और त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को दिया। तो विश्वरूप ने नारायण कवच इंद्र को दिया जिससे इंद्र शक्तिशाली हुए और शक्तिशाली होकर इंद्र के लिए यज्ञ किए। जब विश्वरूप इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, चूंकि विश्वरूप के पिता देवता के कुल से थे परंतु विश्वरूप की माता जो थी वे असुर कुल से थी, तो विश्वरूप यज्ञ में बैठे थे और यज्ञ में बैठकर एक ओर से देवताओं को आहुति दे रहे थे, देवताओं की शक्ति बढ़ा रहे थे, परंतु विश्वरूप का अपने मामाओं के साथ भी बहुत प्रेम था, असुरों के साथ भी बहुत प्रेम था, तो दूसरी ओर से असुरों को आहुति दे रहे थे, असुरों का भी बल बढ़ा रहे थे। इंद्र ने देखा कि मैंने इसे मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए बुलाया है और ये असुरों की शक्ति बढ़ा रहा है। इंद्र से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और देखते देखते इंद्र ने अपनी तलवार निकाली और यह दूसरे गुरु के गला काट दिया। बहुत बड़ा अपराध इंद्र ने किया। ब्रह्म ब्राह्मण का गला काट दिया, ब्रह्म अपराध इंद्र से हुआ और ब्रह्म अपराध का पाप चढ़ा। इंद्र के ऊपर दया खाकर चार लोगों ने यह ब्रह्म अपराध ले लिया। याद है आप लोगों को? दीपक प्रभु बताएंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। इसका अर्थ ध्यान से सुन रहे हैं। वृक्ष ने पाप लिया, स्त्रियों ने लिया, जल ने लिया और पृथ्वी ने लिया। ये चारों लोगों ने 25-25 प्रतिशत इंद्र ने जो पाप किया था वह ले लिया और इंद्र ने ये चारों को आशीर्वाद दिया। कौन बता सकता है? पृथ्वी ने 25% पाप ले लिया तो इंद्र ने पृथ्वी को क्या आशीर्वाद दिया? अरे जल ने 25% पाप ले लिया बुलबुले के रूप में, तो जल को क्या आशीर्वाद दिया बताइए मत, कौन जान किसको पता है, बोलिए। हाँ सही जवाब। फिर 25% पाप वृक्ष ने लिया, और वृक्ष का जो गोंद होता है उसके रूप में यह पाप परिणित हुआ, परंतु वृक्ष को भी इंद्र ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? दीपक प्रभु की पत्नी बताएगी। नहीं जानता, ठीक है दीपक प्रभु बता दीजिए। हाँ, वृक्ष को कहीं से भी काटा जाए तो वापस से वह उग जाएगा। और 25% पाप स्त्री ने लिया, जिससे मासिक धर्म प्रारंभ हुआ, और स्त्रियों को यह आशीर्वाद दिया कि आप पुरुषों से भी ज्यादा कामिक सुख प्राप्त कर सकती हो। इस प्रकार से इंद्र का पाप यह चारों लोगों ने ले लिया। इंद्र पाप से रहित हुआ, और पाप से रहित होकर वे फिर से अपना स्वर्ग प्राप्त करने के लिए चला। परंतु यहां पर इंद्र ने विश्व रूप का वध किया था, उसके पिता त्वष्टा को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, इसलिए अब इंद्र का वध करने के लिए त्वष्टा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बिठाया और ब्राह्मणों को कहा कि ऐसा यज्ञ करो ताकि हमारी शक्ति बढ़े और मैं इंद्र को मार सकूं। तो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में आहुति इस प्रकार से देनी थी, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का बल बढ़े, इंद्र के शत्रु का अर्थात त्वष्टा का बल बढ़े। परंतु ब्राह्मण लोग आहुति देते देते ये मंत्र बोलते बोलते मंत्र में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व बोलना था तो बोले वही इंद्र शत्रु विवर्धस्व, थोड़ा पोज देकर बोले, और थोड़ी सी जगह छूट गई तो यह श्लोक का बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये तो संस्कृत नहीं जान सकते। मैं आपको एक हिंदी शब्द दूं कि रोको मत जाने दो, इसी शब्दों को मैं दूसरी ओर से दोहरा हूं। देखिए पहले मैं कह रहा हूं रोको मत जाने दो, इसका अर्थ क्या हुआ, उस व्यक्ति को आप रोकिए मत जाने दो, और इसी शब्दों को कहूं रोको मत जाने दो, इसका अर्थ क्या हुआ, उसे रुकाओ जाने मत दो। वाक्य एक ही है, शब्द एक ही है, परंतु थोड़ा पोज देकर उच्चारण करने से इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, उसी शब्द को कहेंगे रोको मत जाने दो। तो इसी प्रकार से ये कह रहे थे इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु त्वष्टा का बल बढ़े, परंतु थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया, और इसका अर्थ हुआ कि इंद्र जिसका शत्रु है वह इस यज्ञ से प्रकट हुए, और यह आहुति देने पर देखते ही देखते उस यज्ञ से बहुत बड़ा विकराल स्वरूप वाला एक असुर प्रकट हुआ, और धीरे धीरे यह असुर इतना बड़ा रूप लेते गया, इतना बड़ा रूप लेते गया कि पूरे आकाश को आवृत कर लिया, और आकाश को आवृत करने के कारण उसका नाम ही वृत्रासुर हो गया। वृत्रासुर असुर की वास्तव में ये असुर नहीं है, भगवान का बहुत बड़ा शुद्ध भक्त है, आगे इसकी कथा आएगी, लेकिन फिलहाल असुर के रोल में है। बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ और ये सब देवता डर गए, त्वष्टा भी डर गए कि हमने आपको मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए कहा था, ये असुर को पैदा करने के लिए नहीं कहा था। अब इंद्र को मारना बाजू में रहा, अब तो त्वष्टा इंद्र सब लोग आपस में मिल गए और इस असुर को मारने के लिए धंधे में लग गए। सब लोग इस वृत्रासुर नाम के असुर को मारने का बहुत प्रयास किए, जितना भी अस्त्र शस्त्र इस वृत्रासुर को मारने के लिए चलाते तो ये इस अस्त्र को तोड़कर अपने मुंह में चबा लेता, इतना बड़ा असुर था। इंद्र यदि गदा का प्रहार करते हैं तो उस गदा को अपने जैसे कोई धनिया दाल खाता है वैसे खा लेते हैं। तो सारे अस्त्र शस्त्र को खा गए और खाने के बाद यह वृत्रासुर सभी देवताओं को मारने के लिए चला। जैसे ही वह सभी देवताओं को मारने के लिए चला तो सभी देवता भयभीत हो गए और एक स्वर में कहने लगे, यदि बचना है तो यह रणभूमि छोड़कर भागो, क्योंकि जो भागा वही बच सकता है, जो यहां पर रह गया वह मरा। तो सब लोग, सभी देवतागण, 33 करोड़ देवता उस युद्ध भूमि से भागे और भागकर इस बार भगवान ब्रह्मा के पास नहीं गए, इस बार साक्षात भगवान विष्णु के पास गए। त्राही त्राही, कृपया करके अब बचाइए। देखिए बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट हो रहा है, 33 करोड़ देवी देवता और देवी देवताओं के राजा इंद्र की क्या हालत है। ये असुर से डरकर भगवान की शरण में जा रहे हैं। इस संसार में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। गीता में भगवान क्लियर कहते हैं कि जो मूर्ख है वे लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवतागण अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो इस संसार के लोगों की रक्षा कैसे करेंगे। देखिए यहां पर वृत्रासुर नाम का असुर प्रकट हुआ तो वे स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सके और दौड़कर भगवान विष्णु के पास गए, चरणों में प्रार्थना किए, प्रभु कुछ कीजिए। तो वास्तव में हम हमारी रक्षा चाहते हैं, हम हमारा रक्षण चाहते हैं या हमें कुछ भी चाहिए तो भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान सब प्रदान करेंगे। और यदि देवताओं के पास आप मांगते भी हो तो देवताओं के पास कुछ नहीं है, देवतागण भगवान से शक्ति लेकर सबको इस संसार में दिया करते हैं। तो इस प्रकार से सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान की शरण में जाकर भगवान को प्रार्थना किए कि भगवंत आप कुछ कीजिए। भगवान देवताओं के सामने प्रकट हुए, भगवान का बहुत सुंदर रूप था, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम, बहुत सुंदर भगवान का रूप। सभी देवताओं ने भगवान का दर्शन किया और भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं आप लोग यहां पर क्यों आए हो। भगवान तो सब जीवों के बारे में जानते, वेदा हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि, इस संसार के सभी जीवों के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में भगवान जानते हैं। भगवान ने कहा कि तुम बहुत गलती करते रहते हो, इस प्रकार से अपने गुरु का अपराध करना और गुरु का सिर काट देना ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरी शरण में आए हो, ये आपका बहुत बड़ा गुण है, इसलिए मैं आपकी रक्षा करूंगा। यदि आपको वृत्रासुर से बचना है, ये बहुत बड़े भयावह असुर का वध करना है, तो आपको एक काम करना होगा। भगवान ने कहा कि यदि आपको वृत्रासुर को मारना है तो आप दधीचि ऋषि के पास जाओ, और दधीचि ऋषि के पास जाकर उसे प्रार्थना करो कि वे अपनी हड्डी दे दे। दधीचि के पास जाकर उसकी हड्डी मांगो। भगवान भी अजीब अजीब मांगने के लिए कह रहे हैं, किसी से धन मांगना होता तो ठीक था, और कुछ मांगना होता ठीक था, हड्डी मांगने के लिए कह रहे हैं। देवताओं ने पूछा, दधीचि जी की हड्डी में ऐसा क्या है कि आप उसकी हड्डी मांगने के लिए कह रहे हैं। भगवान ने कहा, आप लोग नहीं जानते हो, दधीचि ऋषि की हड्डी बहुत मजबूत है। देवताओं ने पूछा, दधीचि ऋषि की हड्डी मजबूत, इतनी मजबूत क्यों है, ये कहां से ये मजबूताई आई। भगवान ने कहा, भजन करने के कारण, साधना और तपस्या करने के कारण दधीचि ऋषि की हड्डी बहुत मजबूत है। वास्तव में जो भजन करता है, भक्ति करता है, उसका शरीर हृष्ट पृष्ट रहता है, और जो भजन नहीं करते हैं वे मांदे ही पड़े रहते हैं, पूरा दिन पड़े रहते हैं एक जगह पर। कभी कभी भक्त लोगों में भी देखा गया है कि शुभ मंगल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं, यदि कम नींद लेंगे जल्दी उठेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। परंतु देखा गया है जो लोग जल्दी उठते हैं, कम सोते हैं, उसकी तबीयत नहीं बिगड़ती है, वे तो बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, परंतु जो 8-8, 10-10 घंटा सोते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती है, वे ही हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। भजन करने वाले कभी बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि भजन करने वाले के पीछे भगवान की शक्ति लगी रहती है, और जो भजन नहीं करते हैं वे तो माया में पड़े रहते हैं, वे तो बहुत, उसे तो बहुत दवाई लेनी पड़ेगी, और भजन करने वाले को बीमारी नहीं सता सकती। तो ये शरीर को कष्ट देना चाहिए, भजन साधन में इस शरीर को लगाना चाहिए, और भजन करने से ही यह शरीर हृष्ट पृष्ट होगा। दधीचि ऋषि की भगवान कह रहे हैं दधीचि की हड्डी मांगो, तो दधीचि की हड्डी मांगने के लिए कहा, जैसे ही भगवान ने कहा कि दधीचि के पास जाओ, दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनकी हड्डी मांगो, तो इंद्र ने कहा, प्रभु आप किसी के भी पास जाने के लिए कहिए, कुछ भी मांगने के लिए मैं मांगूंगा, परंतु दधीचि के पास मुझे मत भेजिए, क्योंकि इंद्र दधीचि ऋषि के पास पहले ही अपना मुंह काला करवा लिए थे। ये भी बहुत बड़ी कथा है पुराणों में। एक बार इंद्र दधीचि ऋषि के पास गए, पहले की इतिहास की बात है, और दधीचि ऋषि के पास जाकर कहे कि मुझे ब्रह्म विद्या दो। दधीचि ऋषि ब्रह्म विद्या जानते थे, मुझे ब्रह्म विद्या दो। जब इंद्र दधीचि के आश्रम में गए तो दधीचि ने पहले ही कह दिया कि मैं आपकी समस्त इच्छा पूर्ण करूंगा, आपको क्या चाहिए मांगो। तो इंद्र ने कहा, यदि आपको देना ही है तो ब्रह्म विद्या दो। तो दधीचि मन ही मन में सोचने लगी, ये इंद्र भोगों में पड़ा रहता है, इतने ऐश्वर्य में मदमस्त है, ये ब्रह्म विद्या ग्रहण करने के पात्र नहीं है। कभी भी कुछ भी विद्या लेनी हो तो पात्रता होनी चाहिए, बिना पात्रता की ज्ञान टिका नहीं सकते हैं, और इंद्र के पास वो पात्रता नहीं थी कि ब्रह्म विद्या को ग्रहण करे। तो दधीचि ऋषि ने सोचा कि ये ब्रह्म विद्या ग्रहण करने का पात्र नहीं है, और यदि मैं इसे विद्या नहीं दूं तो मेरा वचन टूट जाता है, अब क्या करूं। जब ब्रह्म विद्या देने के लिए विवश हो गए तो दधीचि ऋषि ब्रह्म विद्या तो दिए, परंतु ब्रह्म विद्या देने के साथ साथ इंद्र को टारगेट लेकर इंद्र को बहुत झाड़े। उस ब्रह्म विद्या में कभी कभी होता है, जो वक्ता होते हैं कभी किसी व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर प्रवचन करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये ब्रह्म विद्या तो प्रदान किए, परंतु इंद्र का टारगेट लेकर क्या कहे कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि कोई भोगों में पड़ा रहता है तो वह जानवर के समान है, पशु है। इंद्र को मुंह पर ही सुना दी, गाली दे दी इंद्र को कि इस प्रकार से भोगों में पड़े रहना और इस प्रकार से इतने इतने अपराध करना, ये पशु से भी गए गुजरे हैं। जब इंद्र ने इस प्रकार से सुना, जब इंद्र ने सुना कि इस प्रकार से ब्रह्म विद्या मुझे दे रहे हैं और मेरा अपमान कर रहे हैं, तो इंद्र निकाले तलवार, और तलवार निकाल कर बेचारे वक्ता का सिर काटने गए। देखिए, वक्ता को भी कभी कभी संभाल कर बोलना होता है, कैसे श्रोता मिल जाए, इंद्र जैसे श्रोता यदि मिल गए तो वक्ता का सिर भी काट सकते हैं। इंद्र दधीचि ऋषि का सिर काटने गए, परंतु सोचा कि यदि मैं इसका सिर काट दूंगा तो आगे चलकर जब प्रवचन बैठने सब लोग जाएंगे तो पहले मुझे ही याद करेंगे कि इंद्र एक ऐसा व्यक्ति था जो वक्ता का ही सिर काट दिया। इसलिए इंद्र ने उस वक्त दधीचि ऋषि का सिर नहीं काटा, परंतु दधीचि ऋषि को कॉलर पकड़ के धमकी दिया कि यदि आज के बाद यह ब्रह्म विद्या आपने किसी को सुनाई तो मैं आपका सिर काट दूंगा। क्योंकि इंद्र नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का अपयश पूरे संसार में फैले कि मैं ऐसा हूं। इंद्र ने सोचा कि यदि यह ब्रह्म विद्या और किसी को मिली तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। अरे वैसे ही तो बदनाम थे। तो कहा कि यदि किसी को यह विद्या दी तो मैं आपका सिर काट दूंगा। दधीचि ऋषि ने कहा ठीक है। इंद्र वहां से चले गए। एक दो साल के बाद स्वर्ग के अश्विनी कुमार घूमते घूमते दधीचि ऋषि के पास आए और दधीचि ऋषि ने कहा मांगो, आपको क्या चाहिए। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हमें ब्रह्म विद्या दो। दधीचि ऋषि ने कहा मैं देना तो चाहता हूं परंतु इंद्र कह के गया है यदि मैं आपको ब्रह्म विद्या दूंगा तो मेरा सिर काट देगा, इसलिए आप क्षमा करो मुझे, मुझे आपके उपदेश से ज्यादा मेरा जीवन प्यारा है। अश्विनी कुमारों ने कहा इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये स्वर्ग के जो अश्विनी कुमार है बहुत बड़े वैद्य है और ये बहुत बड़े हाड़वेद है, कैसा भी फ्रैक्चर हो गया हो, शरीर का अंग टूट गया हो तो ये मंत्रों के द्वारा इसे ज्वाइंट कर देते हैं। अश्विनी कुमारों ने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, इंद्र भले आए सिर काटने के लिए, हम एक युक्ति आपको बताते हैं, आप एक काम करो हम आपका सिर काट देते हैं और आपका सिर काट कर घोड़े का सिर लगा देते हैं और आप घोड़े के मुख से हमें ब्रह्म विद्या दे दो, जब आप हमें ब्रह्म विद्या दोगे तो इंद्र आएंगे आपके सिर को काटेंगे तो वो घोड़े के सिर को काटकर चले जाएंगे और फिर से आपका जो ओरिजिनल सिर था हम लगा देंगे और मंत्र के द्वारा जोड़ देंगे और तोड़ना जोड़ना ये तो हम जानते हैं। अब देखिए कभी कभी वक्ता की भी बहुत बुरी हालत होती है। एक भोजपुरी में कहावत है कि यदि राजा के दरबार में जाकर अच्छा गाना गाओगे तो राजा अपने दरबार में रख लेगा। क्या है उसको, क्या कहते हैं, किसी को याद है, हम भूल गए। खैर तो अभी क्या करे, अब कहा दधीचि ने ठीक है काटो सिर और क्या करूं। अश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि का सिर काटा और घोड़े का सिर लगा दिया और उनका टेम्पररी घोड़े के ऊपर इसका सिर लगा दिया और ब्रह्म विद्या घोड़े के मुख से ब्रह्म विद्या अश्विनी कुमारों को प्रदान की। इंद्र को पता चला कि दधीचि ऋषि ब्रह्म विद्या दे रहे हैं, इंद्र आए और आकर देखे बिना दधीचि ऋषि के सिर को काट दिया, सिर को काट दिए तो अश्विनी कुमारों ने तो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली थी, बस घोड़े को सिर को रखकर दधीचि ऋषि का जो ओरिजिनल सिर थे वो लगा लिए और मंत्र के द्वारा इसे ज्वाइन कर दिए। इस प्रकार से इंद्र ने ऐसी हरकत दधीचि ऋषि के साथ की थी, पहले धमकी दी और दूसरी बार सिर काट कर आए थे और उस इंद्र को भगवान कह रहे हैं कि यदि आपको वृत्तासुर को मारना है तो वो दधीचि ऋषि के पास जाओ। अब इंद्र क्या मुंह लेकर जाए बताइए, इसलिए इंद्र भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु और किसी भी ऋषि के पास जाने के लिए कहिए, मैं जाऊंगा परंतु दधीचि ऋषि के पास, और यदि मैं जाऊंगा भी तो वो देंगे नहीं क्योंकि पहले से मैं उसका सिर काट चुका हूं और इतनी धमकी और गाली दे चुका हूं तो मुझे नहीं देंगे। भगवान ने कहा डरो मत, मैं आपको कह रहा हूं आप उसके पास जाओ और आप एक काम करो, जब आप दधीचि ऋषि के पास जाएंगे तो उनके जो शिष्य है अश्विनी कुमार उनको आगे रखना, अश्विनी कुमारों को आगे रखकर फिर दधीचि ऋषि से प्रार्थना करना कि अपनी हड्डी दे दो, और दधीचि ऋषि मैं कह रहा हूं कि दधीचि ऋषि मेरे परम भक्त हैं इसलिए वह दे देंगे, और जब वे अपनी हड्डी दे देंगे तो वह हड्डी लेकर, हड्डी से कुछ नहीं होगा, वे हड्डी लेकर विश्वकर्मा के पास जाना और विश्वकर्मा दधीचि ऋषि की हड्डी से बहुत ही तेजस्वी अस्त्र बना देंगे और उस अस्त्र का नाम होगा वज्र, और दधीचि ऋषि की हड्डी से विश्वकर्मा जो वज्र बनाएंगे उस वज्र के द्वारा ही यह वृत्तासुर मर सकता है, अन्यथा वृत्तासुर के मरने का कोई प्रश्न नहीं। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को कहा कि आप दधीचि ऋषि के पास जाओ, और देवताओं को कहते कहते भगवान विश्व भावन देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो। अब आइए इस श्लोक के ऊपर, यहां पर सुखदेव गोस्वामी भगवान को विश्व भावन कह रहे हैं। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न होता है कि इंद्र इतनी इतनी गलती करते हैं, इंद्र की गलती का कोई पारावार नहीं है, आप गिनते जाइए। इंद्र बिचारे गौतम ऋषि की पत्नी के साथ संग किया, अपने गुरु बृहस्पति का अपराध किया, अपने विश्वरूप एक गुरु का गला काट दिया, दधीचि का गला काटा, दधीचि को गाली दिया, भगवान कृष्ण का अपराध किया, एक से एक अपराध इंद्र करता है, फिर भी भगवान उसे क्षमा क्यों कर देते हैं, ये प्रश्न होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान विश्व भावन, भगवान विष्णु इस संसार में सभी का भरण पोषण करने वाले हैं और सभी का भरण पोषण करने के लिए यह देवता बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह देवता ही इस संसार को ठीक करके रख सकते हैं। जैसे इंद्र जो है पानी बरसाते हैं, वरुण देवता समुद्र को संभालते हैं, पवन देवता वायु को बहाते हैं, निमि महाराज निमि नाम के देवता है वो आंख की पलक के ऊपर बैठे हैं। ये सभी देवता अपना अपना कार्य में लगे हैं, तब जाकर हम ठीक से जी रहे हैं। यदि यह देवताओं की भूल को भगवान देखने लगे और सारे देवताओं को छुट्टी दे दे तो हम नहीं जी सकते। तो इस संसार के लोगों को जिलाने के लिए, इस संसार के लोगों का भरण पोषण करने के लिए भगवान इंद्र जैसे देवताओं की भूल को क्षमा कर देते हैं। इसलिए कहा गया है भगवान विश्व भावन, भगवान इस विश्व के जीवन दाता है और इसलिए भगवान सबकी रक्षा करते हैं। तो विश्व भावन भगवान श्री हरि, भगवान को सुखदेव गोस्वामी हरि कह रहे हैं। परीक्षित महाराज यह कथा सुनते सुनते वृत्रासुर का आविर्भाव हुआ और धीरे धीरे करके संसार के सभी लोगों को वह मार डालेगा, खा जाएगा। परीक्षित महाराज डर गए कि अब क्या होगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, डरो मत, भगवान हरि बैठे हैं। हरि हरि शब्द कहकर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं कि भगवान का एक नाम हरि है और हरि का अर्थ होता है हरना। चैतन्य महाप्रभु हरि शब्द का अर्थ कहते हैं, हरि शब्द अनेका अर्थ दुई मुख्यतम। वैसे तो हरि शब्द के बहुत बहुत अर्थ हैं, परंतु हरि के मुख्य अर्थ हैं कि सर्व अमंगल हरे। भगवान हरि सभी प्रकार के अमंगलों को हर लेते हैं, इसलिए कहते हैं मंगल भव नय मंगल हारी, मंगल भव नय मंगल हारी, द्रव उषु दशरथ अजीर बिहारी। सभी अमंगलों को हरते हैं और मंगल को प्रदान करने वाले दशरथ राजा के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र। तो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु सभी अमंगलों को सभी दुखों को हर लेते हैं, इसलिए उनका एक नाम हरि है। परीक्षित डरो मत, भगवान हरि बैठे हैं, वे सभी अमंगलों को हर लेंगे और देवताओं को विजय करवाएंगे। और भी हरि का अर्थ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि। हरि शब्द का अर्थ है सर्व अमंगल हरे, और अमंगल तो हर ही लेते हैं, अमंगल के साथ साथ सब लोगों का मन भी हर लेते हैं। और मन कैसे हरते हैं, प्रेम देकर, प्रेम दिया हरे मन। और वास्तव में हरि शब्द का यदि साधारण अर्थ हम देखें तो हरि शब्द का अर्थ है हर लेना, चुरा लेना। तो भगवान का यह नाम सार्थक है क्योंकि भगवान सबसे बड़े चोर है। भगवान को मक्खन चोर इत्यादि चोर करके पुकारा गया है। और भगवान कृष्ण जो चुराना जानते हैं वे तो आज इस संसार के छोटे बड़े से बड़े चोर भी नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान क्या क्या चुराते हैं। एक भक्त बहुत ही सुंदर कहते हैं कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, हमारे ब्रज में एक बहुत ही बड़ा चोर आया है, क्या चुराता है, कहते नवनीत माखन चुराता है। और केवल माखन नहीं, गोपांग नानाम च दुकूल चोरम, ये गोपियों के चीर भी चुराता है। इतना ही नहीं, अनेक जन्मार जित पाप चोरम, अनेक अनेक जन्मों के पाप भी चुरा लेता है। ऐसा चोर तो हमने पहली बार देखा है, और ये चोर नहीं है, ये तो चोरों का सरदार है। इसलिए चोराग्र गमनम पुरुषम नमामि, इस चोर को हम प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर कहते हैं श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, इस संसार में कुछ ऐसे चोर होते हैं जो गहना चुराते हैं, धन चुराते हैं, किसी की गाड़ी चुरा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी की किडनी चुरा लेते हैं। परंतु ये ऐसा अद्भुत चोर है जो हृदय चुरा लेता है, और हृदय भी किसका, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, श्रीमती राधा रानी का हृदय चुरा लिया। और नवाम बुध श्याम मकांति चोरम। इतना ही नहीं, राधा रानी का रंग भी चुरा लिया और महाप्रभु के रूप में आए। पदाशिता नाम समस्त चोरम, यदि कोई व्यक्ति इसके पीछे पीछे चलता है तो ये उसका सब चुरा लेता है। चुरा के ग्रमणम पुरुषम, ऐसे चोर को हम प्रणाम करते हैं। बहुत ही सुंदर कहते हैं, अकिंचनी कृत्य पदाशितम य करोति भिक्षुम पति गेह हीनम। यदि कोई इस चोर की टीम में शामिल हो जाए, ये चोर का सरदार है और इस चोर के सरदार की टीम में यदि कोई शामिल हो जाए अर्थात भक्त बन जाए, तो यह चोर, यह माखन चोर इस टीम में शामिल होने वाले को घर से बेघर कर देता है और संसार में भटक सबको भटका देता है। ये सच बात है। यदि कोई कृष्ण का भक्त बन जाता है तो वह कभी वृंदावन तो कभी जगन्नाथपुरी, कभी मायापुर तो कभी गोकुल मथुरा, ये घूमते रहता है। केना प्यहो भीषण चोरम इदक, संसार में आज तक ऐसा चोर हमने कभी नहीं देखा है। कहते यदि ये नाम अपि हरत्य शेषम गिरी प्रसाना रपि पाप राशिन। यदि कोई इस चोर का थोड़ा भी नाम ले लेता है तो बड़े बड़े पहाड़ जैसे पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। अद्भुत चोर है, ऐसे चोर को तो हम प्रणाम करते हैं। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राश्च हत्वा च समस्तमेव प्रलायसे कुत्र घृतोत चोरम। अब ये चोर को कहते हैं कि हे चोर, मेरा सब कुछ चुरा कर, मेरा धन भी चुरा लिया, मेरा मान चुरा लिया, सब कुछ मेरा हृदय चुरा कर कहां भाग रहे हो। एक भक्त भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, भगवान आप तो बहुत बड़े चोर हो, चोरों के सरदार हो और आपको हरि कहा ही जाता है, हरि का चोरी होता है हरना, तो भगवान आप इस संसार में सबसे बड़े चोर हो और अक्सर चोर भागते रहते हैं पुलिस के डर से। चोर जो होते हैं पुलिस के डर से भागते रहते हैं और वे ढूंढते रहते हैं कहीं छिपने की जगह मिल जाए। चोरों को अंधेरा बहुत पसंद होता है और साधुओं को उजाला बहुत पसंद होता है। चोर जो होते हैं वे अंधेरा ढूंढते रहते हैं कि ताकि हम छिप जाए। तो भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप बहुत सबसे बड़े चोर हो और आप अंधेरा ढूंढ रहे हो ना, तो प्रभु मेरे इस हृदय में अनंत अनंत जन्मों से अज्ञान का अंधेरा भरा हुआ है, आपको मेरा हृदय से अच्छी जगह छिपने के लिए नहीं मिलेगी, इसलिए यदि आपको छिपना है तो मेरे हृदय में छिप जाइए। तो इस प्रकार से भक्तों का भाव है। तो हरि शब्द के ऊपर मैं कह रहा हूं, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित डरिए मत, हरि बैठे हैं जो समस्त हरने वाले हैं, वे चाहे तो अपने आंखों के इशारे से यह वृतासुर को मार सकते हैं परंतु ये भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते हैं, लीला करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार का की कथा रचे। तो इंद्र को कहे कि आप जाओ दधीचिऋषि के पास। यह कहकर भगवान देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए, अंतरहित हो गए। देवता लोग आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान के रूप को देख रहे थे। यद्यपि देवता बहुत सुंदर है, मनुष्य से करोड़ों गुना सुंदर देवता लोग हैं, परंतु देवताओं से भी करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर भगवान विष्णु की सुंदरता है। देवता लोग देखते रह गए और देखते देखते भगवान अंतरहित हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देवताओं के देखते देखते भगवान अंतरहित हो गए और भगवान जब चले गए तो देवता लोग भगवान को दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम करके अब देवतागण दधीचिऋषि के पास जा रहे हैं। तो देवता लोग को जाने दीजिए दधीचिऋषि के पास, हम भी अपने अपने घर जाते हैं। अगले गुरुवार को सुनेंगे दधीचिऋषि और देवताओं का संवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। अब ये देवतागण किस प्रकार से दधीचिऋषि के पास हड्डी मांगते हैं और दधीचिऋषि तो पहले ना कहेंगे, मैं थोड़ी ना हड्डी दूंगा, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना प्राण दे देगा। अरे भगवान विष्णु भी आ जाए अपना प्राण मांगने के लिए तो भी कोई नहीं देगा और तुम मेरी हड्डी मांगने आए हो। तो इस प्रकार से वार्तालाप होगा, आगे चलकर हम सुनेंगे और ये कथा आगे चलती रहेगी। आप सब लोग समय से आ जाइए, भागवत का आस्वादन कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए।